शांति। आज मैं ऐसा कहूंगी कि मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आप सब महान विभूतियां, प्यारे बाबा के नाम को बाला करने वाले, युगलों के सन्मुख उपस्थित होने का स्वअवसर प्राप्त हुआ है। जो युगल सर्व को ये विदित करा देना चाहते हैं कि एक राजा जनक नहीं थे जिन्होंने विदेही बन जीवन जिया, लेकिन अनेक राजा जनक सम अपने प्रवृत्ति रूपी राज्य में रहकर कमल सम जीवन जीने का सर्व मनुष्य आत्माओं को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित है। जब कोई श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उपस्थित होता है, हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि प्यारे बाबा की तरफ से उन आत्माओं को विशेष शक्तियों के वरदान प्राप्त होते हैं और वो उन शक्तियों के वरदानों के आधार से किसी भी असंभव कार्य को संभव करने में सक्षम हो सकते। वैसे तो युगल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आप सब ने जो सुअवसर प्राप्त किया और इस मौके का लाभ लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, तो देखते हुए ही मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वरदाता के वरदानों की छत्र छाया के तले आप सब पहुंच गए हो। आपको देखते मुझे एक उदाहरण सा सामने याद आ रहा है, क्योंकि आज का विषय है सोल कॉन्शियस, आत्म अनुभूति की स्थिति। बहुत प्रसिद्ध एक पौराणिक गाथा है, कथा है, वो भी राजा जनक से ही लगती है। और राजा जनक की वो कथा पुराणों में इस प्रकार सुनाते हैं कि एक बार राजा सोए हुए थे, उन्हें स्वप्न आया और स्वप्न में उन्होंने क्या देखा कि वे पड़ोसी राजा से हार गए हैं और हार जाने के कारण उन्होंने उस राज्य से देश निकाला ले लिया। और जब जंगल में बहुत समय इधर से उधर घूमते रहे, तब ऐसी गाथा एक कहानी इस प्रकार आती है कि उन्हें बहुत भूख लगी, ये सब देख रहे वो दृश्य, और वो एक मंदिर के किनारे पहुंचे। मंदिर के एक सेवक ने उस समय भोग समाप्त हो चुका है, लेकिन एक पतीले की लिप्टन से, जो उसके साथ पतीले में लगा होता है, उससे उस कड़छी के द्वारा कुछ भोग उसमें से निकाला और राजा के हाथों में उसे थाम दिया। जब राजा उसे भोग को इस प्रकार लेकर चले, तो ऐसा आता है इतने में एक चील आई जिसने राजा के हाथ पर झपट्टा मारा और वो भोग उठाकर ले गई। राजा की नींद खुल गई, एकदम नींद खुलते उन्होंने एक ही शब्द बोला, सत्य क्या है, सत्य क्या है। कहते राजा राजगुरु के पास गए और राजगुरु से जाकर पूछा, सत्य क्या है, क्या मैं राजा हूं और मैंने भिखारी का स्वप्न देखा, या मैं भिखारी हूं मैं राजा का स्वप्न देख रहा हूं। तब कहते हैं राजगुरु अष्टावकर ने उन्हें इतना ही कहा कि राजन, ना ये सत्य है कि तुम भिखारी हो और राजा का स्वप्न देख रहे हो, और ना ये सत्य है कि तुम राजा हो और भिखारी का सत्य देख रहे हो। सत्य वो है जो दोनों समय पर उपस्थित था, जब तुमने राजा को रूप में देखा और जब तुमने भिखारी के रूप को देखा। सत्य वही है जो दोनों समय पर उपस्थित था, और वो सत्य है चैतन्य आत्मा। शेष कुछ सत्य नहीं है, परिवर्तनशील है। अब इतना से एक उदाहरण देकर एक सत्यता का इतना बोध करा दिया कि आत्मा ही सत्य है। लेकिन हम स्वयं स्वयं से पूछते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है, और हमको हमारे प्यारे बाबा ने कितना सुंदर इस सत्य की परिभाषा बताई कि बच्चे जो इन आंखों से दिखाई देता है वो सत्य नहीं, क्योंकि नाशवान है, नश्वर सत्य नहीं होता है। और जो देखने वाली सत्ता है, जो देख रही है, वो अनश्वर है, वो अविनाशी है, और वो तू है, देखने वाला तू है। तो स्वयं को स्वयं पहचान। जब तक तुमने स्वयं को स्वयं नहीं पहचाना, तब तक बहुत कुछ दुनिया की चीजों को जान लिया, पहचान लिया, लेकिन उस जान और पहचान के बावजूद भी तेरा जीवन सुख में और शांत में नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को जगाया है, सोए हुए थे जगाया है, और मैं तो ऐसा कहूंगी सोए भी नहीं थे, वे होश थे। गायन है कि सगर के 60,000 पुत्र थे और सभी मूर्छित पड़े हुए थे। जब उस सगर के पुत्रों पर अमृत का छींटा डाला गया, वो छींटे से वो पुत्र सुरजीत हो गए, मूर्छा उनकी हट गई। सचमुच हम बाबा के बच्चे जो इस जगत में आकर मूर्छित हो चुके थे, बेहोश हो चुके थे, अनकॉन्शियस हो चुके थे। किस चीज से अनकॉन्शियस थे कि हु एम आई, मैं कौन हूं। सब कुछ हो रहा था लेकिन कॉन्शियसनेस में नहीं हो रहा था। इस देह के भान में रहकर सब कुछ किया जा रहा था। बाबा ने आकर ज्ञान का सबसे पहला छींटा देकर हम बच्चों को हमारी कॉन्शियस में लाया। बच्चे जागो, आंख खोलो, पहचानो स्वयं को तुम कौन हो। कई बार बाबा का जब मैं ये शब्द सुनती हूँ कि बाबा ने हमको आत्म स्मृति दिलाई, तो मुझे सचमुच ऐसा आता है साकार ब्रह्मा बाबा को भी, जब प्रथम शिव बाबा ने उन्हें उनकी पहचान दी कि बच्चे तुम देह नहीं आत्मा हो, और साकार बाबा के मुख के ये बोल थे कि जैसे किसी अंधे को आंखें मिल जाएं, किसी मूर्छित की मूर्छा समाप्त हो जाए, किसी मनुष्य को जिसको आंखें नहीं वो देख नहीं सकता, सत्यता को देखने को उसे आंख मिल गई। अरे बच्चे ऐसा लगा, अरे जो पाना था वो तो मैंने अभी पाया, मैं आज तक जिसे पाया हुआ समझ रहा था वो कुछ नहीं पाया था। जिसका बाबा के शब्द थे, ये हीरों का व्यापार नहीं, ये कोयलों का व्यापार था, लेकिन मुझे तो सत्य ने आकर सच्चे हीरों की पहचान दे दी। और उस समय जब बाबा को ये पता चला कि मैं आत्मा हूँ, तो हम बाबा के इन बातों को कई बार सुनते भी हैं, और हो सकता है आप में से भी बहुतों ने ये बात सुनी होगी कि बाबा के अव्यक्त होने के बाद इतनी डायरियां थी जिन डायरियों के अंदर केवल यही एक शब्द था, मैं आत्मा हूँ। यशोदा जो उनके युगल का नाम था, यशोदा आत्मा है। बच्चे जो उनके पुट्टू नाम था, पुट्टू आत्मा है। बच्चे का नाम नारायण था, नारायण आत्मा है। बस आत्मा है, आत्मा है लिख लिख कर बाबा ने डायरियां भर ली। खुशी आ गई, समझ मिल गई, होश में आ गए कि मैं कौन और ये सब कौन है। बस बाबा को हर एक के प्रति यही दृष्टिकोण बन गया, ये सब आत्मा है, ये सब आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। और हम सबके सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि जिस समय बाबा की दृष्टि बदली, अब बाबा को ये चेतस हुआ, ये समझ आई, ये बेहोशी से होश में आया और बाबा ने सबको आत्मिक निगाह से देखना शुरू किया, तो बाबा की युगल का ये अनुभव होता था कि मैं जिसे अपने आदि जीवन में पति परमेश्वर समझकर उसकी पूजा किए बिना उससे गद्दी पर नहीं बेचती थी और उसे परमेश्वर की निगाह से देखती थी, समझती थी मंदिर गुरुद्वारे औरों के लिए हैं, मेरे लिए तो मेरा पति ही परमेश्वर है, मैं पति को पति निगाह से इस कदर भावनाओं से देखती थी। लेकिन समय बदल गया, पता नहीं चला, मैं जब बाबा को देखती और अगर मेरे मन में ये भाव आता ये मेरा पति है तो मुझे लगता मैंने कोई पाप कर दिया है। इतनी ऊंच और इतनी महान विभूति को मैंने एक पति का दर्जा दे दिया। आप विचार कीजिए, ये यशोदा माता का पुरुषार्थ नहीं था लेकिन बाबा के पुरुषार्थ की वो दृष्टि, बाबा की वो स्थिति जो दूसरों की दृष्टि का परिवर्तन कर दिया। बाबा के लौकिक में बच्चे समझ नहीं पाते थे कि बाबा ऐसा कैसे दिखाई देता है, और हम यही शब्द सुनते हैं, उस समय बच्चे ये बोल देते थे हमारा बाबा तो भगवान हो गया, और कुछ नहीं कह सकते थे, कैसे भगवान हो गया, क्योंकि उनके जीवन में अलौकिकता, कुछ न्यारापन और निरालापन देखने में आता था। और वो न्यारापन और निरालापन कुछ और नहीं था, केवल एक ही निरालापन था कि मैं आत्मा हूँ और ये सब आत्माएं हैं। इतनी आत्मिक दृष्टि हो गई कि ये मेरे हैं, ये किसी अन्य के हैं, ये पराये हैं, ये अपने हैं, ये भाव भेद बाबा की नजरों में नहीं रहा। और सर्व आत्माएं हैं और सर्व आत्माओं को ये आत्मिक पहचान दे देनी है, क्योंकि ये सत्य पहचान है जो उस बाप ने दी है और ये सत्य पहचान सबको मिलनी चाहिए। उस समय हमारी आदरणीय दादियां यही हमको बताती हैं कि जो गेट पर खड़ी होती थी बहनें और कुछ नए आगमा आते थे, आगंतुक वहां आते थे ज्ञान सुनने के लिए, तो गेट पर उन्हें देखते ही हम ऐसे ही कहते थे, आओ मम आत्मा, आओ मम आत्मा, ये भी मेरे जैसे आत्मा है जो इस ईश्वर के घर में आई है। इतने प्यार से उन्हें देखते और इतने प्यार से उनको बुलाते कि उनको आते ऐसी ममता प्राप्त होती कि हम किसी अपने घर और अपनों के बीच में आए। केवल आत्मिक दृष्टि। आज हम बच्चों को बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे कितनी देर स्वयं को आत्मा समझते हो? ठीक है, हम कहेंगे सोल कॉन्शियस हुई है, रियली अगर सोल कॉन्शियसनेस में आ गई है तो उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति, उसकी कृति, उसका व्यवहार क्या आत्म स्थिति के अनुकूल है, या केवल थोड़ी सी मूर्छा से होश आई है लेकिन संपूर्ण मूर्छा समाप्त नहीं हुई है? संपूर्ण मूर्छा समाप्त हो जाए, एक ही बोल निकलेगा, मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा। अभी केवल गीत गाते हैं, हमें आत्मा तुम है आत्मा, आपस में सब भाई भाई, कहने तक बिल्कुल सुंदर है लेकिन प्रैक्टिकल हम सब स्वयं से पूछकर देखते हैं कि हम कितनी देर स्वयं को आत्मा समझते हैं। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे किन्हीं संस्कारों को बदलने में समय लगेगा, क्योंकि जन्म जन्म के पुराने संस्कार हैं। और कई बार हम देखते हैं कई बाबा के बच्चे जो पुरुषार्थ में चल रहे हैं, काफी समय से चल रहे हैं, चलते चलते अगर वो अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ पद पर ले जाना चाहते हैं और कभी स्वयं का स्वयं जब निरीक्षण करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो परिवर्तन आना चाहिए, जो परिवर्तन हमसे हमारे बाबा चाहते हैं, वो परिवर्तन और उतना परिवर्तन स्वयं में हम नहीं देख पा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ समय ज्ञान में चलते हैं, कुछ अन्य आत्माएं हम में हमारा परिवर्तन ज्ञानिष्ठ देखना चाहते हैं, और जब उनको हमसे ये परिवर्तन प्राप्त नहीं होता तो कई बार वो निरुत्साहित हो जाते हैं कि फलां फलां ज्ञान में चले लेकिन अभी तक उनमें ही ऐसा परिवर्तन नहीं आया, तो हम कैसे समझे कि हम परिवर्तित हो जाएंगे। बाबा हम बच्चों को कहता है आपका परिवर्तन विश्व को परिवर्तन करेगा, कहने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ये पुराने संस्कारों का परिवर्तन एक एक संस्कार को हटाने से नहीं होने वाला है, क्योंकि जन्म जन्म के बेअभिमान के बने हुए संस्कार इतने जटिल हो चुके हैं और इतने ज्यादा हो चुके हैं कि किस समय भी वो जागृत हो जाते हैं। और कभी वो संस्कार जो बहुत समय से जागृत नहीं था, लगता था शायद अब चेंज हो गए, और फिर किसी अवसर पर किसी मौके पर अगर वो संस्कार पुनः दिखाई देता है तो पुरुषार्थी को कई बार अपने आप से निराशा आती, अभी तक तो परिवर्तन हुआ नहीं। और कई बार पूछते भी हैं कि क्या बहन जी परिवर्तन होगा भी, क्या सचमुच मनुष्य बदल के देवता बन जाएगा। नॉलेज है लेकिन अपने परिवर्तन की कमी कभी स्वयं का संशय ज्ञान में संशय दिला देता है। और बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं बच्चे तो ज्यादा परिवर्तन का सोच नहीं, क्योंकि देह अभिमान के बने हुए बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म ऐसे संस्कार हैं जिन्हें शायद तो समझ भी नहीं पाएगा। इसलिए तो एक एक संस्कार को बदलने की कोशिश ना कर, लेकिन तुझे जो प्रथम लेसन मैंने दिया है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, मैं सर्वशक्तिवान का पुत्र हूँ, तो इस स्मृति की स्थिति को जमाता चला चल। अगर तेरी स्थिति देही अभिमानी होती चली जाएगी और देह में रहते हुए कर्म इंद्रियों से कर्म कराता हुआ, कर्म का कर्ता मैं हूँ, कर्म इंद्रियां केवल कर्म करने के लिए मेरे निमित्त हैं, ऐसा समझ कर्म क्षेत्र पर कर्म करेगा तो ये कर्म जिन्होंने तुझे बंधन में बांधा हुआ है वो तुझे बंधन से छोड़ते चले जाएंगे। और वो जो देह के अभिमान वश तेरे संस्कार बने हैं उन संस्कारों का स्वतः ही परिवर्तन होता चला जाएगा। तो केवल एक बात का अभ्यास कर ले कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। कई बार हम में से कई अनजान बच्चे बन जाते हैं, कहते बाबा यही तो कहते हैं देही बनो देही बनो, आत्मनिष्ठा की स्थिति में आओ, ये तो हमको पता चल गया, अब कुछ और हमें बताइए। बाबा कहते हैं और अभी बताने की जरूरत नहीं है, क्या ये पाठ पक्का हो गया है। बच्चे बाप बार बार बताता है, किस लिए बताता है, क्योंकि ये बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लेसन है, इसके आधार से तेरा परिवर्तन आना है। हम स्वयं से स्वयं पूछें, हम कितना समय सारा दिन में स्वयं को आत्मनिष्ठ करते हैं। अभी बैठे हुए भी हम कितनी देर इस स्थिति में बैठे हैं कि हम आत्मा इन कर्म रूपी ऑर्गन्स के द्वारा सुन रहे हैं, आत्मा सुन रही है, मैं चैतन्य हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ। जिस पर मैं कभी कभी अपने जीवन का एक उदाहरण देती हूँ कि हम साकार बाबा के सामने जब थे तो छोटे आए थे, तो बाबा ने हमको एक बार पूछ लिया कि बच्ची अपने को आत्मा कितनी देर समझती हो। तो मैंने सोचा आत्मा का तो लेसन मिल गया और पता चल गया कि शरीर और आत्मा दो चीजें हैं, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। तो मैंने बाबा को बड़े ही प्यार से कह दिया, बाबा सारा दिन मैं आत्मा ही समझती हूँ। मालूम नहीं कि समझना किसे कहते हैं। उस समय मुझे बाबा के ये बोल आज तक सुनाई देते हैं, अच्छा बच्चे कल आके बाबा को बताना तुमने कितनी देर अपने को आत्मा समझा। तो बाबा ने मुझे दो तीन बातें कही, स्नान करने जाना बाल्टी जब भरना, क्योंकि उस समय बाहर नल होते थे, बाथरूम में बाल्टी भर के अंदर ले जाते थे। तो बाबा ने कहा बाल्टी जब भरना तो इन हाथों को ऑर्डर देना कि चलो उठाओ बाल्टी भरो, जब भर लें इन सेवकों के द्वारा बाल्टी उठा के अंदर ले जाना और फिर गाड़ी को स्नान कराना। बच्चे ये बाबा भी ऐसे करता है। जब भोजन पान करना तो देखना ये गाड़ी का भोजन है, इसलिए गाड़ी को ये पेट्रोल उचित है, ये उसे पेट्रोल देना, ऐसे गाड़ी को पेट्रोल रूपी भोजन देना। ऐसा नहीं बहुत स्वाद तो ज्यादा खा लें, कम स्वाद तो छोड़ दें, जो उचित है गाड़ी के लिए वो भोजन उसे देना है। मैंने जब बाबा के ये बोल सुने तो मुझे आया ये तो सहज ही है। और दूसरे ही दिन जिस समय मैं स्नान करने जा रही मुझे एकदम बाबा के बोल याद आए। मैंने बाल्टी रख तो जरूर दी ये समझ के कि ऑर्गन से मैं काम करा रही हूँ, लेकिन उसके पश्चात पूर्ण रूपेण विस्मृत हो गई, भूल गई और मैं बाल्टी उठाकर अंदर भी ले गई। फिर नहाने के समय एक सेकंड ख्याल आया कि गाड़ी को स्नान कराना बाबा ने कहा था, लेकिन कुछ क्षणों ही के लिए याद आया और दूसरे क्षण फिर विस्मृति हो गई। मैंने भोजन करते भी चेक किया, थोड़ा सा स्मृति आती फिर भूल जाता। तो मन में आया मैंने तो बाबा को कह दिया था कि बाबा मैं सारा दिन अपने को आत्मा समझती हूँ और ये तो मैं विस्मृत हो जाती हूँ। और सेकंड डे में थोड़ा विद्यार्थी अगर दिया हुआ टीचर का काम पूरा नहीं करता है थोड़ा डरता जरूर है। उस दिन मैं आगे नहीं बैठी, थोड़ा चौथी पांचवी लाइन में होकर बैठी कि आज मेरे ऊपर बाबा की दृष्टि ना आ जाए। लेकिन बहुत खुशी की बात मुझे हुई कि बाबा ने मेरे से पूछा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। पूछ लेता तो मैंने तो ये काम किया ही नहीं। टाइम बीत गया, 11 बजे के लगभग बाबा जाते थे झोपड़ी की तरफ, और ऐसे झोपड़ी की तरफ जा रहे थे, मैं भी खुशी खुशी बाबा को देख रही थी, बाबा ने मुझे ऐसे करके बुला लिया और मैं भागती चली गई। सोचा क्लास की बात तो क्लास में खत्म हुई, अब तो बाबा प्यार से बुला रहा है, मैं चली गई। बाबा ने जाते मुझे ऐसे देख के प्यार से कहा, कितनी देर बच्ची अपने को आत्मा समझा। मैंने सोचा ये तो पकड़ा गया आदमी। तो मैंने बाबा को सत्य बताया, मैंने कहा बाबा बहुत थोड़ी देर मैं भूल जाती थी। तो बाबा ने कहा बच्चे इसके बहुत अभ्यास की आवश्यकता है, बार बार बच्चों को अभ्यास करना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। यहाँ तक बाबा कह देते जब किसी को देखो तो मस्तक में देखो तो मस्तक मणि दिखाई देगी, मणि देखने से बच्चे तुम्हें मुराद हासिल होगी, और अगर देह देखोगे तो विष मिल जाएगा जो जहरीला होता है। मुराद हासिल करनी है या विष लेना है, तो हम फौरन कहेंगे नहीं, हमें तो मुरादें हासिल करनी है। लेकिन प्रैक्टिकल में मुरादें हासिल करने के लिए हमारी दृष्टि स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति कैसी चाहिए? और अगर स्वयं के प्रति दैहिक दृष्टि नहीं तो अन्यों के प्रति दैहिक दृष्टि नहीं बन सकती। और जब तक दैहिक दृष्टि नहीं, देही दृष्टि है, देह को देखते हैं लेकिन देही अवस्था नहीं है, देह के अभिमान में रहते हैं, संस्कारों के परिवर्तन नहीं हो सकते। बार बार देह अभिमान से किए गए कर्म बने हुए संस्कारों के रूप में उदय हो जाते हैं। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं, किसी चीज को स्मूल छेदन करना हो, जड़ से अगर उसे खत्म करना है तो बच्चे जहां से वो उत्पन्न होता है उसे वहां से खत्म करने की आवश्यकता है। और ये जो देह अभिमान के बने संस्कार हैं, वो देह समझ कर ही तो बने हैं। अब आत्मा समझ कर इन संस्कारों से दूर हटना है। फिर दूसरा इसमें प्रश्न आता है कि जैसा संग होता है वैसा ही तो रंग होगा। अब सारा टाइम हम देह की दुनिया में रहते हैं, देहधारियों के संग में रहते हैं। अब उनका रंग हमें ज्यादा लगेगा या हम देही स्थिति में रहेंगे? बाबा हम बच्चों को यही बताते हैं कि तो किसी संग से अपना बचाव कर सकता है कि ये अच्छा संग है या बुरा संग है, इनके संग में रहने से फायदा है या इस संग से मुझे नुकसान है, इस बात को तो समझ सकता है। लेकिन समझने की कोशिश क्या कर, ये देह जिसमें तू स्वयं रहा पड़ा है, तू दूसरे के संग से तो स्वयं को अलग कर सकता है, लेकिन देह में रहता हुआ इस देह से स्वयं को अलग कैसे करेगा? क्योंकि देह का भी तो संग है ना, और प्रतिपल इसके संग के बिना हम सैके में जीवन जी नहीं सकते। आत्मा को हर पल देह में रहना पड़ता है और देह नाशवान है, झूठी।
काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज।
जन्म जन्म की प्यास बुझा ले पावन बन सरकार,
योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा।
आत्मा सुन लो मेरी आवाज,
संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं ये राज।
तू है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज,
सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज।
योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा।
परम भाव से आए हैं शिव गंगा तनवार मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार परम धाम से आए शिव ब्रह्मा तनवार मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार
चलना अब तो यही ज्ञान का सार
योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा योगी जीवन है प्यारा योगी जीवन है प्यारा
के में जीवन जी नहीं सकते आत्मा को हर पल देह में रहना पड़ता है और देह नाशवान है झूठी है तो झूठ के संग में रहते हुए नाशवान के संग में रहते हुए हम में झूठ और नाशवान अपना प्रभाव डालता है। इसके लिए बाबा हम बच्चों को बार बार बताता है देह में रहते हुए बच्चे अभ्यास करना कि केवल मात्र देह मेरा वस्त्र है ये कर्म इंद्रियां मुझे कर्म करने के लिए कर्मचारी मिले हैं लेकिन मैं देह नहीं हूं मैं देही हूं। अगर तू अपने पोजीशन में रहेगा तो इसके संग का रंग तुझे नहीं लगेगा और जब तू अपनी पोजीशन को भूल जाएगा तो देह अभिमान का रंग तुझे अपने रंग में रंग लेगा। आप कैसे इसके अभिमान से दूर हटे तो हमेशा ये समझते हैं आज एक पागल खाने के अंदर डॉक्टर हैं और वो डॉक्टर जहां पेशेंट है वही टेबल चेयर लगा के बैठे हैं है तो पागल खानों के साथ पागलों के साथ हैं लेकिन उन्हें अपने पोजीशन का मालूम है कि मैं डॉक्टर हूं मैं इस हॉस्पिटल का डॉक्टर हूं आई एम नॉट ए पेशेंट ये सब पागलों को मुझे ट्रीट करना है वो अपने पोजीशन में है। ऐसा नहीं कह सकते कि सारा टाइम पागलों के संग में रहने के कारण हम स्वयं को भी थोड़ा पागल समझ नहीं लगते नहीं ये पागलों को शफा देने के लिए मैं डॉक्टर हूं अपनी पोजीशन मालूम है। आप जेल में जाइए तो जो ही दरवाजा खोलते हैं तो अंदर जेलर भी हैं अंदर कैदियों को सब देख रेख करने वाले भी अंदर आपको मिलेंगे लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि चोरों के साथ में रहकर मैं भी चोर ही बन गया कैदियों के साथ में रहने के कारण मुझे भी कैदी स्वयं को समझने का अभ्यास हो गया नहीं क्यों उन्हें अपनी पोजीशन का ख्याल है कि मैं कौन हूं। बाबा भी बच्चों को यही कहते हैं बच्चे जो हो और जैसे हो अपने पोजीशन को ख्याल में लाओ मैं अजर हूं अमर हूं अविनाशी हूं मैं शांत हूं शुद्ध हूं और पवित्र हूं मैं कर्म इंद्रियों का स्वामी हूं कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाला कर्म इंद्रियों का मालिक हूं मैं इनका गुलाम नहीं हूं। जब तक तुझे स्वयं की स्वयं को पोजीशन जिस पोजीशन में तू इस शरीर में है जब तक तुझे अपनी पोजीशन की स्मृति नहीं तब तक तुझे देह में रहकर देह का रंग लग जाता है और फिर वो रंग तुझे बार बार देह अभिमान में लाकर देह के अभिमान के वशीभूत कर्म कराकर बने हुए संस्कारों को और मजबूत कर देता है और कुछ नए संस्कारों का निर्माण हो जाता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को एक ही शब्द कहा बच्चे तुम आत्मा हो। ये वास्तव में मूर्छित को सुरजीत होने की यही संजीवनी बूटी है जब तक संजीवनी बूटी से सुरजीत नहीं हुए। मूर्छित व्यक्ति का हाथ चलता भी है, आंखें हिलती भी हैं, लेकिन मूर्छित है। हमें याद रखना है हम कौन हैं, हम कौन हैं और किसके हैं। कई बार सोल कॉन्शियस को हम क्या समझते हैं कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि योग का संबंध सोल कॉन्शियस से है। सोल कॉन्शियस जितना जितना होते जाएंगे आत्म अभिमानी, उतना गॉड कॉन्शियस होते जाएंगे। लेकिन सोल कॉन्शियस का मतलब क्या? सोल कॉन्शियस हुई है, किस बात की कॉन्शियस हुई है? सोल की आंखें खुली हैं, सोल को चेतस हुई है, कॉन्शियस हुई है वो सोल। किस चीज की कॉन्शियस हुई है कि इन शरीर की मैं मालिक हूं, सर्वशक्तिवान की मैं संतान हूं, परम धाम की मैं रहवासी हूं, शांत शुद्ध पवित्र प्रेम मेरा स्वभाव है, सृष्टि की आदि की मैं आत्मा हूं, पूरा वर्ल्ड साइकिल मैंने राउंड किया है। जो भी आत्मा के विषय का ज्ञान है, जब तक हम उस पूरे ज्ञान के स्वरूप में स्थित नहीं होते तब तक सोल कॉन्शियस नहीं हुए। कई बार सोल कॉन्शियस समझते बस मैं आत्मा हूँ, बार बार मैं आत्मा हूँ ज्योति बिंदु, मैं आत्मा हूँ ज्योति। आप सारा दिन क्या दिनों दिन करते जाइए, इतनी कॉन्शियस तो नहीं हुई हमें। सोल को कॉन्शियस हुई है मैं अविनाशी हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ। केवल शरीर तो चोला है, पाठ अदा करने के लिए मैंने लिया है, ये पाठ अदा करके मैं दूसरा चोला ले लूंगी। मैं कभी मरने वाली नहीं हूँ, मैं निर्भय हूँ। सर्व आत्माएं अपना अपना रोल अदा कर रही हैं। किसी के रोल को कटाक्ष करना, क्रिटिसाइज करना, या किसी के रोल से अपने रोल को कंपेयर करना, मिलान करना, ये मेरा काम नहीं है। हर एक का अपना अपना रोल है, हर एक व्यक्ति का अपना पार्ट अदा कर रहा है। जब तक टोटल आत्मा को अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं आई तब तक उसका योग कैसे लगेगा? कभी हमें कोई प्राणी दिखाई देता है, कभी किसी के स्वभाव दिखाई देते हैं, कभी किसी के संस्कारों का प्रभाव पड़ जाता है और हम फिर कहते रहते हैं क्या करें, इस जगत में चलना तो चाहते हैं लेकिन आज का मनुष्य चलने नहीं देता है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुझे कोई रोक नहीं सकता, तेरा अपना व्यक्तिगत रोल है, लेकिन तू दूसरे के रोल से अपने रोल को मिलान करने बैठ जाता है, या दूसरे के रोल को अपने रोल के अनुकूल बनाना चाहता है। और जब वो मिलान नहीं होता या अनुकूलता नहीं आती तो तू डिस्टर्ब हो जाता है। और जब तेरे मन में नाना प्रकार के संकल्प, चिंतन, नफरत, घृणा, कहीं मेरापन कहीं तेरापन, अगर ये सब भाव भेद आएंगे तो तू मेरे से कैसे जुड़ पाएगा? इसलिए सोल कॉन्शियस हो गई, सबको देखते हुए उसे फौरन लगता है ये सब कौन है और मैं कौन हूँ। हम सब कहाँ के वासी हैं, कहाँ पर आए हैं? ये तो सब टेम्पोररी खेल है, सब खेल कर खेल अपना पूरा करके चले जाएंगे, लेकिन हर एक के साथ हमारा व्यवहार, हमारा बोल कैसा होना चाहिए? कई बार मनुष्य परेशान होता है, कहते हम किसी से सम्मान से बोलते हैं, हम किसी से प्यार से बोलते हैं, जब दूसरे का बोल सम्मानमय और प्यार में नहीं होता तो मन बड़ा खराब होता है, उसे बोलने को मन नहीं होता, उसके नजदीक जाने का मन नहीं होता, क्योंकि मनुष्य बड़ा बिगड़ चुका है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे मनुष्य तो बिगड़ेगा, तामसिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जहाँ एक तरफ तामसिकता बढ़ती जा रही है वहाँ सत्य प्रभु तुझे सात्विकता की तरफ बढ़ाने के लिए रोज का पाठ पढ़ा रहा है। अगर तेरी सात्विकता बढ़ती जाए तो तामसिकता को सात्विकता पर जीत नहीं हो सकती, लेकिन सात्विकता की तामसिकता पर जीत होगी, लेकिन तब जब सात्विकता का लेवल भी वैसे ही बढ़ा हो। लेकिन हम अनेकों के कारण अपनी सात्विकता को छोड़ देते हैं। जैसे अपने जहाँ से मैं आई तो वहाँ क्लास में एक बाबा के महावाक्य आए, उसमें बाबा ने कहा बच्चे आपकी वृत्ति के परिवर्तन से आपकी प्रवृत्ति की कई समस्याएं वो सब हल हो सकती। तो हमने सबको काम दिया कि बाबा ने ये कहा, सत्य बाप का बोल सत्य ही है, तो हमारी वृत्ति से हमारे पारिवारिक परिस्थितियों का परिवर्तन कैसे हो सकता है। अगर किसी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो तो केवल वही शेयर करना, थ्योरेटिकल नहीं चाहिए। तो बहुतों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाई कैसे वृत्ति से परिवर्तन हुआ। तो हमने एक एग्जांपल सुनाया, किसी एक ने कहा कि दीदी मैंने अपने बच्चों के लिए अपने खुशी और अपने आराम को नहीं देखा और उनको स्टैंड करने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, उनको बड़ा करने के लिए मैंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, लेकिन अपने बच्चों को बहुत अच्छी पालना दी। मेरे ऊपर ऐसा भी समय आया कि धन का संकट हो गया, मैंने अपना जेवर और महान कपड़ा बेचकर भी अपने बच्चों की पालना में बहुत कुछ किया और आज मेरे बच्चे स्टैंड हो गए। लेकिन अचानक मेरे साथ कुछ ऐसी बात हो गई जिससे मैं बहुत व्याकुल हुई और बड़ी परेशान थी। उस समय मैंने देखा मेरे बच्चे मेरी परेशानी को देख रहे हैं और मेरी व्याकुलता का उन्हें आभास हो रहा है, लेकिन किसी को कोई असर नहीं हो रहा और ऐसा समझ रहे हैं शायद मम्मी की नेचर हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। और वो मुझे पूछते भी नहीं है कि आज बात क्या, इतनी उदास क्यों हो, आज आपने भोजन भी ठीक से नहीं खाया। कोई बात नहीं, अपना आराम से हंसते खेलते घूमते खाते हैं। उस समय मुझे इतना दुख हुआ कि जिनके खाते मैंने सब कुछ लगा दिया, अपना सुख आराम नहीं देखा, अपनी धन दौलत नहीं देखा, अपने दुनिया की शान मान नहीं देख पाई, लेकिन इनके लिए सब कुछ किया और आज ये बच्चे ऐसे, ये परिवार जिन्होंने मेरे ऐसे समय पर मेरे सहयोगी नहीं बने। आप कहो इनके लिए मृति बदल लूं, मैं कैसे बदल सकती। उस समय हम यही बात सुना रही थी, हमने कहा आपको कष्ट कौन दे रहा है, कहते ये बच्चों से कष्ट हुआ है। परिस्थिति ने मुझे इतना कष्ट नहीं दिया जितने बच्चों के व्यवहार से मुझे कष्ट हुआ, और वास्तव में देखा जाए ये बच्चे कष्ट नहीं दे रहे, लेकिन माँ कष्ट का बीज कैसे बो रही है। वो उस समय को याद करती है जब मैंने बच्चों पर धन लगाया, जब मैंने बच्चों के लिए तन लगाया, जब मैंने बच्चों के लिए अपना सुख आराम भी त्यागा, वो जो किया हुआ बच्चों के प्रति कर्म है, जब उसकी स्मृति उसे मन में आती है तो उसे बच्चों की तरफ से वो रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण मन में दुख हो रहा है। वास्तविकता यही है कि जो कुछ मैंने किया एक मातृभक्त होने के नाते मैंने प्रॉपर किया, या अपने मोह के वशीभूत होकर जो भी मैंने किया मैंने अच्छा ही किया। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं अच्छा किया कहीं जाएगा नहीं, तेरे किए कर्म के खाते में जमा हो जाएगा। तुझे दुख इसलिए हो रहा है कि मैंने किया, लेकिन आपको चाहिए अब रिस्पॉन्स उनसे प्रत्युत्तर। अब वो प्रत्युत्तर वैसा न मिलने के कारण आत्मा परेशान हो रही। दूसरी बात कि चलो प्रत्युत्तर तो पूछे ना, कम से कम हमदर्दी तो हो जाए कि मम्मी के साथ कौन सी बात ऐसी बन गई। तो हमने कहा कई कर्म ऐसे होते हैं जो हम व्यक्तिगत करते और कई कर्म ऐसे होते हैं जिसमें अनेकों को हम साथी बनाते हैं फिर वो कर्म करते। हम ऐसा क्यों ना समझ लें कि ये जो मेरे सामने घटना है और इस घटना में कोई भी मेरा शेयर करने वाला या साथी नहीं बना, बड़ा स्पष्ट होता है कि ये जो संबंध कर्म का खाता मेरे सामने आया ये मैंने व्यक्तिगत किए गए कर्म का फल है। इस कर्म में इनका कोई शेयर नहीं, कोई हिस्सा नहीं है। जब उनका कोई हिस्सा नहीं है तो मेरे साथ भागी क्यों बनेंगे, मेरे कर्म में वो पार्टनर क्यों बनेंगे? वो नहीं बन सकते हैं। क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना कर्म और अपना अपना कर्म का फल और कर्म का दंड है। अपने अपने किए कर्म कुछ जमा होते हैं, कुछ किए हुए कर्म का खाता हमारा नहीं होता है, घटता है। सचमुच हमारी आत्मिक दृष्टि और आत्मिक वृत्ति बन जाए तो हम कभी किसी पर गिला शिकवा नहीं कर सकते। मालूम है जो कुछ मैंने किया मैंने अपने लिए किया, मैंने इनके लिए नहीं किया, लेकिन मैंने अपने कुल मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए, एक माँ होने के नाते बच्चों की सेवा सुरक्षा और पालना के लिए जो कुछ किया। हाँ ये जरूर है कि बच्चों का फर्ज बनता है कि माँ के ऐसे समय पर वो हमदर्दी करें, लेकिन अगर वो नहीं करते तो मैं दुखी हो जाऊं ये भी तो मेरा फर्ज नहीं बनता। उस समय मुझे ये भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ और जो कुछ मैंने किया वो अपने लिए किया और जो कुछ आज मेरे सामने कर्म का भोगना आई वो मेरे किए किसी कर्म का दंड आया। मैं किसी से बुरा मना जाऊं, किसी से नफरत कर लूं, किसी से घृणा कर लूं, संबंधों में विच्छेद ले आऊं तो मेरी समस्या और बढ़ जाएगी, मेरी समस्या घटेगी नहीं। मुझे समस्या को घटाना है, समस्या को बढ़ाना नहीं। और ये बात तब तक स्मृति में नहीं आएगी जब तक हमारा आउटलुक और एटीट्यूड स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति आत्मिक नहीं बना। बहुत जरूरी है कि सब आत्मा है, हर एक का अपना अपना व्यक्तिगत रोल है। इस व्यक्तिगत रोल में हम किसी के भागीदार कहां तक बन सकते हैं ये हमें विचारने की बात। और बाबा ने तो हमको बहुत सुंदर एक बात कह दी कि बच्चे ये कर्म इंद्रियां हैं, ये पांचों कर्म इंद्रियों का तू स्वामी है, मालिक है। अगर तू देह में स्वामी बन रहेगा एक समय ऐसा आएगा कि प्रकृति के पांचों तत्व इकट्ठे उपद्रव मचाएंगे, लेकिन प्रकृति पति को वह तत्व कष्ट नहीं पहुंचा सकते। तो प्रकृति का मालिक बन, प्रकृति में रह और प्रकृति द्वारा कर्म करा, लेकिन प्रकृति के अधीन ना हो जाना। अब आप सोचेंगे कि प्रकृति पति बन कर्म करने से पांचों तत्व कैसे हमारे अधीन हो सकते हैं और कैसे वो हमें उपद्रव मचे तो हमें कष्ट नहीं देंगे। ये भगवान के बोल हैं। प्रकृति पति को ये सेवक पांचों तत्व कष्ट नहीं देंगे, बड़ा सहज काम है। और तो कुछ नहीं करना, केवल ये पांचों तत्वों का बना हुआ शरीर रूपी प्रकृति केवल इसके मालिक बनके इसको इच्छा के अनुसार श्रीमत के अनुकूल इसको चलाना है। इसका बाबा का भाव क्या है? तो हम ऐसा देख रहे थे, बाबा ने एक वाणी में यहाँ तक कहा कि बच्चे बहुत तेज से तूफान आएगा, बहुत तेजी से बाढ़ आएगी और ऐसा लगेगा कि डुबो देगा, लेकिन जहां प्रकृति पति बच्चा होगा प्रकृति अपना रुख बदल लेगी। प्रकृति पति को, प्रकृति सेवक कष्ट नहीं पहुंचा सकती। हम इसे साधारण समझते हैं कि बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, ये तो पता चल गया ना। बाबा कहते पता नहीं चला, ये पता ही तो तुझे सब कुछ पहुंचा देगा। ये फर्स्ट लेसन है, लेकिन फर्स्ट लेसन हमारा लास्ट लेसन है। जब तक हमने इसमें परिपक्वता नहीं प्राप्त की तब तक हम ना तो कर्म इंद्रियों को जीत सकते हैं, ना कर्म क्षेत्र पर किसी कर्म पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ना कर्म संबंधों के साथ सही रूप से हम चल सकते हैं। बहुत जरूरी है मैं आत्मा हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, चाहे वो भक्ति की कहानी ही है, कि भाई श्री कृष्ण को अपने टोकरे में डालकर जब पिता जमुना पार कर ले जा रहे थे तो जमुना का पानी खूब बढ़ता चला आया और पिता के मुख तक पानी आ गया और लगा अब तो डूब ही जाएगा, लेकिन उस समय दिखाया कि उस बालक ने अपने टोकरे से अपनी टांगे बाहर निकाली और गंगा उनका, जमुना उनके चरणों को स्पर्श करके नीचे चली गई। वो डुबोने के लिए नहीं आ रही थी, वो प्रकृति जीत आत्मा के चरण स्पर्श करने के लिए आ रही थी और चरण स्पर्श करके वो कैसे गंगा का जल नीचे चला गया। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे ये पांचों तत्वों का बना हुआ देह, तुझे कुछ नहीं करना, केवल देह की कर्म इंद्रियों को अपने कंट्रोल में लाना है। जैसे हम लोगों को एक एग्जाम्पल दे देते हैं, वो बहुत पुराना एग्जाम्पल लगभग सबने सुना हुआ है कि कैसे एक शैतान बच्चा जब पिता को काम नहीं करने दे रहा था तो पिता ने एक नक्शा ही तो विश्व का टुकड़े टुकड़े करके अपने पुत्र को दे दिया ताकि बच्चा ध्यान लगा रहेगा, इसे जोड़ कर लाओ, और स्वयं वो काम करने बैठ गया। और वो शैतान बच्चा 5 मिनट के अंदर वो विश्व का नक्शा जोड़ कर ले आया। पिता आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने इस विश्व के नक्शे टुकड़े कर दिए इतने ज्यादा और मेरा बेटा इसको जोड़कर इतनी जल्दी ले आया। उसने आखर पुत्र से पूछा, बेटा इसे जोड़ा कैसे, कहानी है? तो बेटे ने क्या कहा, उसे तो मालूम नहीं विश्व का नक्शा क्या होता है। उसने कहा, पिताजी यहाँ पर एक बच्चे की शक्ल थी, क्योंकि उस नक्शे के एक साइड में नक्शा था और दूसरी साइड में बच्चे की शक्ल बनी हुई थी, उसने तो बच्चे की शक्ल को जोड़ दिया। जब इधर बच्चे की शक्ल जुड़ी इधर नक्शा तैयार हो गया। ठीक बाबा भी हम बच्चों को कहता है, तो केवल अपना नक्शा ठीक कर ले, ये सारा नक्शा ठीक हो जाएगा, तो चिंता न कर। इतना सर्वशक्तिवान हम बच्चों को निश्चिंत करने के लिए आया और फिर भी हम बच्चे ये कहें कि अपने को आत्मा कैसे समझें। मुझे आता है आप सब समय निकाल कर यहाँ आए और आप सबको मालूम है कि आपके लिए कितने सेवा पर उपस्थित भाई और बहने हैं। कोई आपके लिए भोजन बनाने की तैयारी में है, कोई अनाज साफ करने की तैयारी में है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई आपके कमरों में बिछोने बिछा गया है, कोई सफाई कर रहा है, कोई क्लास कराने की तैयारी में है, क्योंकि महान विभूतियां आई हैं परम महान बनने के लिए। और अगर हम बाबा के बच्चे ये सब चीजें ध्यान में ना दे करके, चलो थोड़ा बैठ के गपशप मारे, बगीचे में बैठे थोड़ी बातचीत हो गई, चलो बाहर चले दुकान में या कोई शॉपिंग कर ली जाए, थोड़ा सा लिटरेचर में देखिए आजकल लिटरेचर कौन सा आया, क्लास होती है तो कोई बात नहीं, क्लास तो कभी भी कर लेंगे, ये संगठन ये मिलना कहाँ मिलेगा, एक ही सेवा केंद्र के सेवा केंद्र में तो जाते थे, लेकिन यहाँ तो सेवा केंद्र वालों को एक जगह रहने का मौका मिला, तो जरा आपस में बातचीत तेरी मेरी कर ली जाए। हम भूल जाते हैं कि ये स्थान बातचीत तेरी मेरी करने का नहीं है, ये शॉपिंग करने का स्थान नहीं है, ये घूमने का स्थल नहीं है, ये आनंद लेने का स्थल नहीं है, ये स्थल है अपने जीवन को सदा काल की उन्नति के क्षण है। इन क्षणों को हमें कैसे बिताना चाहिए? हमको याद है साकार में बाबा अपने बच्चों की उन्नति के लिए इतना ध्यान रखते थे। जब ट्रेनिंग सेंटर पांडव भवन में बन रहा था तो बाबा ने कहा, बाबा ने ऊपर की छतें बनवाई हैं, इसलिए बनवाई हैं कि मेरे बच्चे मुरली सुनने के बाद छत पर जाएंगे और टहलते टहलते जो बाबा ने कहा उसका मनन चिंतन कर उसे अपने स्वरूप में लाएंगे, इसलिए बाबा ने इन सब चीजों का निर्माण किया। तो बाबा पल पल बच्चों की उन्नति का ध्यान रखते थे। हम सब भी अगर स्वयं की उन्नति का ध्यान रखें तो मैं समझती हूँ ये 3-4 दिन आपके लिए मेमोरेबल डेज हो जाएंगे, यादगार के दिन बन जाएंगे कि हम यहाँ गए लेकिन हमने 1-2 को आत्मिक दृष्टि से देखा। आपको सारे जगत में कोई नहीं मिलेंगे जो आपको आत्मा की निगाह से देखेंगे, यहाँ 1-2 को हम आत्मिक निगाह से देख सकते हैं। आप में से बहुतों को मालूम होगा कि पहले पहले ये ओम शांति शब्द 1-2 से मिलने पर हम उच्चारित नहीं करते थे, खाली 1-2 को दृष्टि देते हुए आत्मिक स्थिति में रहे, दूसरे को भी आत्म स्थिति की वो परिचय देते उसी स्थिति में मेलन मनाते थे। ये तो जब सेवा के क्षेत्र पर निकले तब बाबा ने कहा, बच्चे दुनिया नहीं समझ पाएगी कि दृष्टि से 1-2 को ये क्या संकेत देना चाहते हैं। तो इस शब्द का उच्चारण किया गया ओम शांति, वो भी बाबा ने कहा ये ओम शांति शब्द नहीं है, बच्चे ये स्वरूप की स्मृति में स्थित रहे, सर्व को स्वरूप की स्मृति में स्थिति दिलाने का ये महामंत्र है, इसे साधारण शब्द न समझना। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छा ये अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन हम कैसे ये अभ्यास करें? तो आज थोड़े शब्दों में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अभ्यास के लिए आपको 4 बातें अपने सामने रखनी। पहली बात कि हमारा लक्ष्य क्या है आत्म स्मृति के अभ्यास करने का। दूसरी बात, इस अभ्यास करने में हमें किस बात के अनुभव की गहराई में जाना है। और तीसरी बात, इस अनुभव करते हुए मुझे अपना निरीक्षण करना है कि कौन से ऐसे संकल्प या व्यर्थ संकल्प या विकल्प जो मेरी इस स्थिति में मुझे विघ्न या बाधा डालते हैं। और चौथा है, इसका अनुभव की गहराई मुझे क्या रियलाइज कराना चाहती, मैं क्या रियलाइज करना चाहता हूँ, ये मुझ आत्मा को अपने आप से पूछना है।